कामायनी का हेलो सलाम और नमस्ते। कबीर और मैं फिर हाजिर हैं आपके अपने कार्यक्रम हमसे है देश के साथ। आज है हमारी छठी कड़ी।
जी हाँ, और हमेशा की तरह इस कड़ी में भी हम लाए हैं डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र से जुड़ी ढेरों बातें।
जानते हो, मेरी क्लास भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जैसे काम करती है। जैसे लोकतंत्र में चुनाव के जरिए एक नेता यानी लीडर चुना जाता है, उसी तरह मेरी क्लास के बच्चे अपना मॉनिटर चुनते हैं। आओ सुनते हैं कि बुलबुल बाग में नेतृत्व को किस तरह से बांटा गया है।
बेताल छब्बीसी, बेताल छब्बीसी रे।
बेताल, बेताल, बेताल। जैसा तुमने मुझे समझाया, मैंने लोकतंत्र को वैसे समझ लिया।
चलो तुम्हें बुलबुल बाग ले चलते हैं और बताते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर यानी सत्ता में संतुलन बनाना लोकतंत्र में कैसे कारगर है।
नेवले जी, लोकतंत्र तो हम ले आए, पर शायद काम करने का तरीका बुलबुल बाग को अब तक नहीं आया है।
सही कहती हो चींटी। मुझे भी ये खबर मिली है कि संसाधनों का लेन देन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है।
मुझे लगता है हमें अपनी टीम से इस बारे में सलाह मशवरा करना चाहिए।
घुमक्कड़ घिरनी, शेख चंद सारस, हुकुम चंद हंस, मेधावी मेंढक और उनके कुछ सहायक जानवर और पक्षी बूढ़े बरगद के नीचे चौकड़ी लगा कर बैठे थे।
आप सब यहाँ आए उसका शुक्रिया। आज की मीटिंग बुलबुल बाग और बाकी जंगलों के बीच लेन देन के काम के बारे में है। क्या आप जानते हैं कि आपकी मेहनत के बावजूद संसाधन अकाल की इस स्थिति को कम नहीं कर पाए हैं? जानवरों और पक्षियों तक जरूरत की चीजें पहुंच ही नहीं पा रही।
पर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी सारी सारस बहनी काम में लगी हैं, हुकुम चंद के सभी हंस काम में लगे हैं, बल्कि पूरा जंगल। फिर ऐसा कैसा संभव है चींटी जी?
देखो घुमक्कड़ गिरनी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि काम सब कर रहे हैं, पर निगरानी के लिए कोई नहीं।
पर ये सब होगा कैसे चींटी जी?
आसान है हुकुम चंद, जैसे हम चींटियाँ अपना काम आपस में बांट लेती हैं, बिल्कुल वैसे ही आज जैसे हम बूढ़े बरगद के नीचे बैठे सोच विचार कर रहे हैं।
पर बरगद के नीचे ही क्यों?
अरे सारस, बूढ़ा बरगद एक प्रतीक है समझदारी का। क्यों चींटी जी, ठीक कहा ना मैंने?
बिल्कुल ठीक कहा।
चींटी जी, जैसे आपने बूढ़ा बरगद चुना है, मैं कहता हूँ कायदे लागू करवाने का काम किसी ऐसे पेड़ की छांव में हो, हैं, जो बुलबुल बाग में जगह जगह हो। क्यों हुकुम चंद जी? हैं?
हाँ, ऐसा एक पेड़ तो है, वो है पीपल। ये कायदे लागू करवाएगा कौन? मेंढक मियां, तुम?
हुकुम चंद, कड़वे बोल बोलने की कोशिश में काम की बात कर जाते हो। मेधावी मेंढक और पीपल के पेड़, ये काम करेगा। क्यों मेंढक?
हाँ, पर मैं अकेले नहीं, मेरे बहुत से और साथी हैं, मछली, बतख और बाकी सब।
पर कायदे ढंग से लागू हो रहे हैं कि नहीं, ये देखना भी जरूरी है। इसीलिए मैंने सोचा है कि नेक नेवले की निगरानी में ये काम सौंपना चाहिए। और हाँ, जैसे हम सबके पास एक पेड़ की छांव है, उनका पेड़ होगा नीम का, कड़वा पर सच्चा।
नेक नेवले ने अपनी समझदारी से एक और तरकीब निकाली। हर नीम के पेड़ की टहनियों पर एक पोस्ट बॉक्स लगवाया गया, जिसमें जानवर और पक्षी अपनी शिकायतें बिना नाम और पते के डाल सकते थे। इस बीच जो शिकायतें आईं, वो ज्यादातर बातूनी बंदर के खिलाफ थीं।
बातूनी बंदर? माना कि तुम बुलबुल बाग के सबसे लोकप्रिय जानवर हो, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम इन मासूम जानवरों और पक्षियों के लिए आए संसाधन खुद हड़प कर जाओ।
मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे लगा कि जानवर खुशी खुशी मुझे अपना हिस्सा दे रहे थे।
खुशी खुशी नहीं, डर से और तुम्हारी धमकियों से। अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम एक महीने तक इसी नीम के पेड़ के नीचे रहो, और एक महीने तक तुम्हारी खुराक होगी नीम का काढ़ा।
नीम का काढ़ा?
पर अब सबसे अहम सवाल, बुलबुल बाग का लोकतंत्र किन तीन स्तंभों पर खड़ा था?
बरगद, पीपल और नीम। मेरा मतलब नीतियां और कानून बनाने वाले, और इन नीतियों और कानून पर निगरानी रखने वाले।
सही जवाब, और ये मैं चला।
अरे बेताल सुनो, अरे बेताल,
और
सुनो।
सत्ता के संतुलन को समझने के लिए सुनते हैं देश विदेश।
देश विदेश से
लोकतंत्र का विचार नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है। 350 ईसा पूर्व यूनान के फिलोसोफर एरिस्टोटल ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में कहा है,
नेतृत्व भले ही किसी भी ढांचे में हो पर उसके काम के तरीके तीन धाराओं में बांटे जा सकते हैं, वैधानिक, प्राधिकारिक और न्यायिक। फ्रेंच फिलोसोफर बाउंदू मोंटेस्क्यू ने भी यही बात रखते हुए कहा है, जब वैधानिक और प्राधिकारिक ताकत सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के हाथ में दे दी जाए तब स्वतंत्रता पाना मुश्किल है, न्यायिक ताकत वैधानिक ताकत से जोड़ी जाए तो विधायक की मनमानी हावी होगी और विधायक ही न्यायाधीश होगा, आधिकारिक ताकत से जुड़कर न्यायिक ताकत हिंसा और अत्याचार की ओर चल पड़ेगी। इसलिए अगर एक ही व्यक्ति विशेष या एक ही संस्था के हाथों में वैधानिक, प्राधिकारिक और न्यायिक ताकत दे दी जाए तो अच्छा नेतृत्व पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा।
आज की आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली मोंटेस्क्यू के इसी विचार पर आधारित है। शासन प्रणाली के इस ढांचे को ट्रायस पॉलिटिका कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से वैधानिक यानी लेजिस्लेटिव, प्राधिकारिक यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायिक यानी जुडिशरी शामिल हैं।
प्राचीन यूनान से प्राचीन भारत, जहां पाली तिपितिका बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन दस्तावेजों में एक ऐसा राष्ट्र मिलता है जिसमें गणतंत्र के सिद्धांत काफी प्रचलित थे। ऐसे राष्ट्र में अलग अलग समुदाय सभाएं रखते थे और एक दूसरे के हित के लिए नियम कानून का गठन करते थे। 6 ईसा पूर्व में भी गण और संघ दो ऐसे शब्द थे जो ऐसी व्यवस्था के पर्यायवाची बने जहां सत्ता में संतुलन बनाए रखना जरूरी समझा जाता था और जिन्हें गणतंत्र कहा जा सकता था। आज जानकार है कहते में हमारे साथ हैं वी द पीपल की अध्यक्षा विनीता सिंह।
जानकार है कहते।
तो विनीता जी, आपसे हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान के कौन से मूल सिद्धांत हैं जिन्हें समझना जरूरी है?
जो मूल सिद्धांत हैं वो हमारे संविधान के पहले पन्ने पर जिसको हम उद्देशिका कहते हैं उसमें दिए गए हैं, और वो मूल सिद्धांत जो हैं वो हैं समानता, न्याय, आज़ादी और बंधुता।
संविधान लिखने वालों के सामने क्या चुनौतियां थीं?
ये पूरी प्रक्रिया जो थी वो तकरीबन 3 साल की थी। ये दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी और इसकी आखिरी बैठक जो है वो 26 नवंबर को हुई थी 1949 में। अब अगर हम उस समय की कल्पना करें कि 300 लोग बैठे हुए हैं दिल्ली में, अलग अलग जगहों से ये आए हैं, कौन से लोग थे? अंबेडकर थे, के.एम. मुंशी थे, नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, और क्या कह रहे हैं ये कि ये मूल सिद्धांत पर ये देश चलेगा, ये समाज इस तरीके से बनेगा, समानता पर बनेगा, और क्या ढांचा होगा कि इस तरीके के मूल सिद्धांत हम लोगों के ज़िंदगी में आएं। हाँ, और बाहर क्या हो रहा है? बाहर मारकाट हो रही है उस समय, क्योंकि हमारे देश का विभाजन भी हुआ था। तो चुनौती तो बिल्कुल उसी समय की ही चुनौती थी ना। हम कह रहे हैं इसमें कि औरतों को समान अधिकार दिया जाएगा, लेकिन आप ये सोचिए कि संविधान की जो सभा थी उसमें कितनी औरतें थीं? 9, 300 लोगों में से 9 औरतें थीं। तो आप अगर इसकी कल्पना करें कि हम जो बोल रहे थे और जो उस समय समाज में था कितना अलग था वो, लेकिन जो संविधान सभा में थे उन्होंने इस तरीके की कल्पना की थी, हमारा देश इस तरीके से बनेगा और हम इन मूल सिद्धांतों को लेकर कानून ऐसे बनाएंगे और हमारे जो लोग यहाँ पर हैं, जो देशवासी हैं, जो नागरिक हैं, वो इस तरीके की समाज के कल्पना में वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, ये सोच थी उनकी।
संविधान में ऐसे कौन से प्रावधान हैं कि सारी सत्ता एक ही जगह पर केंद्रित ना हो?
कानून बनाने का जो काम है वो एक तंत्र को दी गई जो है विधायिका। अब लागू करने का जो काम है, ये जो तंत्र इसमें आता है वो है हमारे कार्यपालिका। और इन पे नजर रखना कि ये जो कानून बन रहा है और जो लागू हो रहा है वो हमारे संविधान के जो मूल्य हैं उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं, ये एक नजर रखने के लिए बहुत जरूरी होता है वो तीसरा तंत्र जो है न्यायपालिका। और ये जो तीन तंत्र हैं वो उनके लिए क्लियर है कि हम सब कुछ जो कर रहे हैं वो नागरिक के लिए कर रहे हैं।
विनीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अब बारी है आपके इम्तिहान की और सरप्राइज गिफ्ट की। जी हाँ, बस आपको देना होगा इस छोटे से सवाल का सही जवाब। इनमें से कौन सा भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है?
जवाब देने के लिए कॉल कीजिए 07966210428 पर।
दिए गए ऑप्शंस के लिए बटन दबाइए और पाइए हमारा सरप्राइज गिफ्ट। ये कॉल निशुल्क है।
और अब हम अपने अगले सेगमेंट दिल से में सुनेंगे अदम गोंडवी जी की कविता 100 में 70 आदमी।
सौ में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे रख के हाथ कहिए देश क्या आजाद है। कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है। जिस शहर में मुंतजिम अंधे हो जलवागाह के, उस शहर में रोशनी की बात बेबुनियाद है। ये नई पीढ़ी पे मबनी है वही जजमेंट दे, फलसफा गांधी का मौजू है कि नक्सलवाद है। यह गजल मरहूम मंटो की नजर है दोस्तों, जिसके अफसाने में ठंडे गोश्त की रुदाद है।
तो आपको हमसे है देश कार्यक्रम कैसा लगा, हमें आप पत्र, ईमेल और फोन के जरिए जरूर बताइए। अगर आप लोकतंत्र से जुड़ी अपनी कविताएं और गाने भेजना चाहते हैं तो वो भी जरूर भेजें। हमारा पता है आइडियो सिंक मीडिया कम्बाइन 1381 सेक्टर 37 फरीदाबाद 121003 हरियाणा। और ईमेल आईडी है freedom@ideosyncmedia.org यानी freedom@ideosyncmedia.org। SMS और फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9958747972। हमसे है देश की अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए नमस्कार।